Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh जी, मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अलायंस की तमाम जो कह लीजिए हमारे दीन है, हेड्स हैं अलायंस का। मैं पहले बड़ा दीवाना हूँ, मैं इनका ऑफिशियल कोई मेंबर तो नहीं हूँ लेकिन कल्बी तौर पे मैं मेंबर हूँ, दिली तौर पे मैं मेंबर हूँ। अजरे वाला, आज का हमारा जो टॉपिक है आज का हैप्पीनेस का, मैं इस टॉपिक को अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि पिछले दो सालों में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक की डिमांड हमें आती है कॉर्पोरेट में भी, फौज में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, इदारों में भी, इंतजामिया, हर जगह पर हमें हैप्पीनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट की डिमांड बड़ी आती है कि जी शाह साहब आप वक्त निकालिए और इस टॉपिक पे को टॉक कर दीजिए। कई इदारों में मेरा जाने का इत्तफाक हुआ और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे या हैप्पीनेस पे गुफ्तगू हुई और मैं जान के हैरान हुआ कि बड़े बड़े ओहदों पे बैठे बंदे, अगर उनसे उनका दिल का हाल पूछा जाए कि आपका ग्रेड 22 है, आप अपने जरा दिल के हाल को बयान करें तो वो रो के कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। हालत ये है कि लोगों के पास सरमाए की इंतहा के बावजूद मैं बेशुमार प्रैक्टिकली लोगों को जानता हूँ, एक दो नहीं हजारों को शायद जानता हूँ, इंतहा की कामयाबियां जिन्हें कामयाबियां माना जाता है, कहा जाता है, उसके बावजूद मैंने लोगों को नाखुश देखा। अच्छा, अब ये जो खुशी का कह लीजिए कोई यॉर्डस्टिक है जिसे मैयर की जाती है, एक तो हम उसको जोड़ते हैं अचीवमेंट के साथ कि आपने सक्सेस हासिल की आप खुश हो गए, लेकिन जो हैप्पीनेस पे जो रिसर्च है वो बताती है कि हैप्पीनेस एक अप्रोच का नाम है, ये एक सोचने के अंदाज का नाम है, ये आपकी एवरेज है कि आपके होशो हवास में जो दिन के 16-17 घंटे गुजरते हैं उन 16-17 घंटों में आप खुश कितना होते हैं और गमजदा कितना रहते हैं। तो अगर 51% भी आप खुश रहते हैं तो दरअसल आप एक खुश इंसान है, लेकिन अगर आपकी 50% से रेशो कम है तो मुझे इश्फाक साहब याद आ जाते हैं। इश्फाक साहब से मेरी याद अल्लाह थी, मैं उनके साथ बैठा करता था, उनसे सवाल पूछता था, तो एक दिन मुझे कहने लगे कि यार तुम्हें पता है कुछ लोग ना चिब्बे होते हैं। तो मैंने बड़ा हैरान होकर पूछा कि इश्फाक साहब चिब्बा तो डब्बा होता है, टीन का डब्बा चिब्बा होता है, तो मैंने कहा जी बंदा कैसे चिब्बा हो सकता है? कहते तुम गौर से देखोगे ना तो लगेगा ये 47 से पहले मुस्कुराता था, उसके बाद मुस्कुराया कोई नहीं। तो चेहरे के एक्सप्रेशन स्टैटिक हो जाना अलामत है कि एवरेज ये बंदा मुस्कुराने वाला नहीं है, ये भूल चुका है मुस्कुराना। दूसरा सवाल उसी वक्त इश्फाक साहब ने पूछा मेरे से कि तुम्हें पता है ये चेहरे के मसल्स कितने होते हैं? तो मैंने कहा जी इश्फाक साहब मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ये 125 होते हैं। मैंने कहा जी 125 मसल्स होते हैं? कुछ कह रहे लगे तुम जानते हो क्यों होते हैं? मैंने कहा जी नहीं पता। कहते इसकी वजह यह है कि बंदा जुबान से बोले ना बोले उसका चेहरा पहले बोलने लग पड़ता है, और खुश और मुतमईन इंसान के चेहरे पे लिखा होता है कि इसके पास पैसों की दौलत है कि नहीं है, लेकिन इत्मीनान और खुशी की दौलत इसके पास है। तो चेहरे के एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि ये बंदा एवरेज 51% प्लस ये खुश है। अब ये खुशी जिसको हैप्पीनेस हम कह रहे हैं, इसके बारे में जो रिसर्च है मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं, यानी मेरी ऑब्जर्वेशन तो है ही है लेकिन मैं चाहूंगा कि जो मैंने इस पे 15-20-25 किताबें पढ़ी होंगी हैप्पीनेस पे, या मैंने ब्लॉग्स पढ़े होंगे, जो मैंने रिसर्च पढ़ी होगी वो आपके साथ शेयर करूं। हैप्पीनेस के बारे में जो अप्रोच है उसमें सबसे पहला जो नुक्ता आता है कि देखा गया है हैप्पी खुश वो लोग होते हैं जो अपने नसीब पे राजी रहते हैं। आज इस माशरे में नसीब का मुआजना बड़ा ज्यादा है। नसीब के मुआजने का मतलब ये है कि आप अपने नसीब को किसी के नसीब के साथ कंपेयर करते रहते हैं। जब नसीब के साथ कंपेयर करते हैं तो चाहते ना चाहते आपकी जो खुशी है वो गुम जाती है और नाखुश आप रहने लग पड़ते हैं। सो वाजिब अली वासिफ का जुमला कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पे खुश रहे, वो पूरा उतरता है कि खुश नसीबी का आगाज ही किससे होता है? अपने नसीब पे राजी रहने से। बड़े लोग, हसन निसार साहब ने कॉलम लिख दिया इसी जुमले के खिलाफ, उन्होंने कहा जी अगर नसीब पे राजी हो जाए तो दुनिया में प्रोग्रेस तो कभी नहीं होगी। अच्छा, वो इसको पहुंच नहीं सके इस जुमले की तय तक। जुमले की हकीकत यह है कि पूरी कोशिश करने के बाद जो नतीजा मिल गया है जिसको बदला नहीं जा सकता, जिस पे आप बेबस हो गए, अगर आप खुशी से उसको कबूल कर लें तो आपकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा। लेकिन आज क्या है, लोग अपने नसीब पे राजी नहीं है, और नसीब पे राजी ना रहने वाला बंदा बहुत कुछ होने के बावजूद नाखुश रहता है। ये पहला नुकता है, यानी मान जाना कि जो मेरा नसीब है वो मेरा नसीब है, और नसीब के साथ ये भी साथ जुड़ी हुई चीज है, ये दुनिया की वाहिद दौलत है नसीब। दुनिया का कोई डाकू आपका सब कुछ छीन सकता है, नसीब नहीं छीन सकता। नसीब इतनी शानदार चीज है, एक अगर आप मूवीज देखें तो एक बड़ा शानदार एक्टर है उसका नाम है मॉर्गन फ्रीमैन, आप में से जो इंग्लिश मूवीज देखते हैं उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन को देखा हो। मॉर्गन फ्रीमैन का एक इंटरव्यू मैं पढ़ रहा, उस पर किसी ने उससे पूछा कि दुनिया के, उसे अवार्ड मिला हुआ दुनिया के नंबर वन नंबर टू एक्टर का, मूवीज में वो काम करता, तो उससे किसी ने पूछा कि मॉर्गन फ्रीमैन ये इतना जबरदस्त नसीब कैसे तुम्हारा बना, आखिर वजह क्या थी कि तुम्हें अल्लाह ने इतनी कामयाबी दे दी। उसने कहा जी मैंने कुर्सी खींची थी मुझे कामयाबी मिली। उसने कहा जी मैं समझा नहीं। कहते जी मैं शरारती बच्चा था, चौथी क्लास में था, पढ़ने वाला मैं था नहीं, तो मेरे सामने जो अगला बैठा हुआ था स्टूडेंट, टीचर ने उसको खड़ा करके सबक सुना, सबक सुन रहा था, जब वो बैठने लगा तो हम भी और आप भी, हम सब करते रहे कुर्सी खींचते, वो कुर्सी खींची तो अगला लड़का गिर गया, लड़का गिरा तो टीचर स्टिक पकड़ के मेरे पीछे भागा, मैं क्लास से निकला और कॉरिडोर में भाग रहा था, मेरी टक्कर एक बंदे से हो गई। वो जिससे टक्कर हुई उसने मुझे पकड़ के कहा क्या हुआ, मैंने कहा जी वो सर मुझे मार रहे हैं, स्टिक उनके हाथ में है। तो उसने कहा यार छोड़ो मैं मैनेज कर लेता हूँ तुम जाओ। तो सामने वाला जो टीचर था स्टिक लेके आ रहा वो चला गया, टक्कर होने वाले ने इसको देखा, उसने कहा यार मैं ड्रामे का टीचर हूं, स्टेज पे करेक्टर कम हो गया, तुम वो रोल प्ले करोगे। कहता उसने उंगली पकड़ी मुझे स्टेज पे ले गया, जब मैं स्टेज से कभी उतरा तो मैं मॉर्गन फ्रीमैन बन चुका था। मैं हैरान कि एक छोटे से वाक्य कुर्सी खींचने ने मेरे नसीब को खोलना था। जब आपका ईमान होता है कि आपका नसीब आपके साथ जुड़ा है और जिन चीजों को आप कभी बुरा समझ रहे हैं किसी और वक्त में जाके पता लगती है कि वो बड़ी अच्छी थी, तो नसीब चोरी नहीं होता। नसीब पे राजी रहने वाला, नसीब पे यकीन करने वाला बंदा ज्यादा खुश रहता है बनिस्बत इसके जो नसीब के कीड़े निकालता रहता है। वाला दूसरा रिसर्च का नुकता ये आता है कि खुश वो लोग रहते हैं जिनके पास फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ शुक्रगुजारी नहीं। आप एक रस्मन हम कई लोगों को मिलते हैं, हाँ जी सुनाओ की हाल है, कहें शुक्र अल्लाह का, और सुनाओ जी, कहते बाप पैड़ी लंघ रही है, पहला जुमला और दूसरे जुमले में तजाद होता है। आप किसी से रस्मन जो कह रहे होते हैं बड़ा अल्लाह का करम है, उससे जरा उसका कारोबार का हाल, जॉब के हालात पूछे तो वो कहेगा यार बस मरे पाए। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेट है, उनकी 56 एज है। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया, मैं कहा सर व्हाट यू से अबाउट योर जॉब, वो कहता दुनिया की घटिया तरीन नौकरी मेरी है। मैं कहा सर व्हाट यू से अबाउट योर सैलरी, कहता जी मेरा गुजारा नहीं होता, मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं कहा सर अपने बॉस के बारे में कुछ बताइए, कहना फांसी होता मैं दे देता हूँ उसको। मैं कहा सर छोड़ते नहीं है, कहना बस चार साल रह के छोड़ देंगे। हर बंदा किसी वक्त के इंतजार में है कि ये वक्त आएगा मैं राजी हो जाऊंगा, जो है उस पर शुक्र नहीं कर रहा। सो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड का ना होना, जिसको जैसा बड़ी अच्छी आप किताब अभी कोट कर रहे थे, रोना बायरन की बकायदा किताब आ चुकी, उसने पूरी रिसर्च की है, साइंटिफिक रिसर्च की सूरत में उसने साबित किया है, किताब का नाम है दी मैजिक। उसने कहा दुनिया में वो लोग ज्यादा खुश कामयाब होते हैं जिनके पास फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होती है। वो यहां तक साबित करती है कि जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है वो आप में मकनातीसियत बढ़ा देते हैं। एक मैग्नेटिज्म होता है, जैसे मकनातीस पतला पड़ा होता है उसके गिर्द एक रेंज होती है, उस रेंज में जैसे कोई लोहे का टुकड़ा आता है वो खिंचा चला आता है। जब आपकी मकनातीसियत यानी ओरा पॉजिटिव होता है तो आपकी जिंदगी में बेहतरी भी आती है और आप ज्यादा मुतमईन रहते हैं। सो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बड़ी जरूरी है। अगर आपके पास शुक्र है, शुक्र के बारे में मैं एक और चीज ऐड करता चाहूँ, हमारे पास शुक्र क्यों नहीं होता, बड़ी दफा ऐसा होता है कि जिस चीज का हम गिला कर रहे होते हैं ना, हमारी आंख नहीं खुली होती, हमें पता नहीं होता कि जिस चीज का गिला कर रहे हैं वो गिला करने वाली चीज नहीं है। सादी शराजी फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, मेरे पाँव में जूती नहीं थी तो मैंने गिला किया कि या बारी ताला मैंने गुलिस्तान बोस्तान लिखी है लेकिन मेरे तो पाँव में भी जूती नहीं है। थोड़ा आगे गए तो देखते हैं कि एक शख्स है जिसके पाँव नहीं थे, फौरन शुक्र किया और एक जुमला कहा कि अक्सर गिले का मकाम शुक्र का मकाम होता है और हम गिला करके उस मकाम को जाया कर देते हैं। सो ग्रेटिट्यूड जोन है वो बदतरीन हालात में भी क्योंकि अल्लाह की मसलत जरूर होगी और बड़ी दफे ऐसे हुआ मसलत निकलती है। आपके पास अगर फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है तो फिर आपकी जो अप्रोच है उसके नतीजे में खुशी आपकी जिंदगी में ज्यादा रहेगी। खुशी का तीसरा सोर्स उन्होंने ढूंढा, खुशी का तीसरा सोर्स रिश्ते हैं, और ये रिश्ते खूनी रिश्ते भी हैं या वो रिश्ते भी हैं जो आप बनाते हैं। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, बड़े लोग खुशहाल होने के बावजूद, कामयाब होने के बावजूद पर्सनल लाइफ में नाकाम होते हैं। मैंने बहुत बड़ा सबक इसी जेलम के एक बुजुर्ग से सीखा, इरफानुल्लाह साहब से, उनकी एक वीडियो शायद आपने भी सुनी होगी। कोई शख्स उनके पास चला गया और जाके कहने लगा कि जी मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव है कैंसर की। उन्होंने कहा अच्छा तुम करते क्या? उसने कहा जी मैं लाहौर का मरूफ कारोबारी शख्स हूँ, मेरे पे अल्लाह का बड़ा इनाम है, मुझे अल्लाह ने पैसा बड़ा दिया लेकिन पैसे के बावजूद मुझे कैंसर हो गया। उन्होंने कहा तुम बिलोंग कहां से करते हो? उसने कहा जी मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। कहा जी तुम फैसलाबाद ये बताओ कितना अरसा पहले गए थे? उसने कहा जी 20 साल हो गए हैं मैं फैसलाबाद नहीं गया। उन्होंने कहा तुम 20 दिन के लिए फैसलाबाद चले जाओ और एक काम करना कि जो तुमसे जुड़े हुए गांव के लोग हैं उनके किसी काम आ जाना, कोई आसानी उनके लिए पैदा कर देना। तो वो 20 दिन के लिए चला गया, किसी को बकरी चाहिए थी, किसी का कुआं खुदवाने वाला था, किसी का ट्यूबवेल, किसी की फीस थी, किसी का इलाज था, किसी का हल था, किसी का ट्रैक्टर था। 20 दिनों के बाद आया तो बाबा जी कहते हैं कि वो पांव में आके गिरा और रिपोर्टें दिखाने लगा कि जी मेरा कैंसर तो वो नेगेटिव है ही नहीं। और ये कहने लगा सिर्फ ये बता दीजिए ये नुस्खा आपको कहां से मिला? तो वो कहते हैं मैंने तो उसे मुस्कुरा के ये जवाब दिया, खुदा के बंदे मैंने किसी को बड़ी किताब में नहीं, मैंने तो रसूल की हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र में बरकत हो, रिस्क में फरावानी हो, तो एक काम करो, अपने रिश्तों को निभाना शुरू कर दो, अपने रिश्तों की कदर शुरू कर दो, अपने रिश्तों का एहसास शुरू कर दो, वैल्यू ऐड करनी शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां कर देगा। सो ये हमारी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं होती सर? सब कुछ होता है, रिश्ते नहीं होते। जैसे इंसान जमीन पर गिरे सब जमीन उसकी हड्डी को तोड़ देती है, रिश्ते कुशन की तरह होते हैं, हर एक को गिरना पड़ता है। आप में से मजबूत इंसान भी, बड़े बड़े कामयाब ताकतवर लोग भी जो उनसे गिर जाते हैं, गिरते हैं नीचे, कुशन पड़ा हो तो वो कुशन क्या करता है, उस तकलीफ को कम कर देता है। लेकिन अगर कुशन ही कोई ना हो, अपना ही कोई ना हो, तो फिर नैजुल बलागा का जुमला सच्चा है, वो क्या हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो जिसका कोई भी नहीं है, दोस्त भी कोई नहीं, जिसका अपना कोई नहीं है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपके रिश्ते होते हैं, आप इन्हें निभाना शुरू कर दें। मुझे नहीं पता कि आपका ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है। गुफार साहब वंस ऐसा हुआ कि आई वाज इन बलूचिस्तान, कोई सेशन था मेरा और मैं खारान में था, खारान इज एट बॉर्डर, बड़ा दूर है यहाँ से, और उसी दिन मेरी बर्थडे भी थी। तो मैंने कभी जिंदगी में मनाई तो नहीं, लेकिन ख्याल आया इतनी दूर मैं हूं तो चले मैं अपनी सालगिरह खुद ही मना लेता हूँ। तो मैंने केक मंगवा के उसे काटने का सोचा, मेरे पास कोई भी नहीं था, मैंने अपना केक काटा और अपने आप को ही हैप्पी बर्थडे टू यू कहा, अपने आप को भी मैं कह रहा था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो गए। क्यों? खुशी भी अकेली हो तो गम बन जाती है, खुशी सबके साथ हो तो दुबाला होती है, खुशी अकेले हो तो तंग करने लग पड़ती है। आज आप अचीव कर लें, आज आप किसी मंजिल, किसी मकसद, किसी जगह पे पहुंच जाएं, आपका दिल करेगा किसी को बताने और दिखाने को, लेकिन अगर अपने नहीं होंगे तो वो खुशियां जो उनसी हैं वो आपकी तकलीफ का सबब बन जाएंगी। सर खुशियां बढ़ती हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी में बांटना होता है, और बांटने का मतलब ये है, गुफार कैसरानी साहब ने बड़ी अच्छी वजाहत की कि बांटना लाजमी नहीं है कि माल जेब में तो आप बांट सकते हैं, बाज़ औक़ात किसी को चंद बोल हमदर्दी के चाहिए होते हैं। बड़े लोग ऐसे हैं, काउंसलिंग की जितनी थ्योरीज और बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसमें रूल नंबर 1 लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी बंदे की तकलीफ 80% कम हो जाती है अगर सुन ली जाए। अगर आप उसके मसले को, उसकी तकलीफ को सुन लें, आप में से कोई डॉक्टर बैठा तो उसको सेकंड करेगा, पुलिस वाले भी सेकंड करेंगे कि किसी को अगर सुन लिया जाए तवज्जो से तो उसकी जो तकलीफ है वो 80% कम हो जाती है। सर आज इशफाक साहब के बकौल हर पाकिस्तानी को एक कंधे की जरूरत है और वो कंधा कोई नहीं है, एक कान की जरूरत है वो कान नहीं है, एक हमदर्द दिल की जरूरत है वो हमदर्द दिल नहीं है। आज से तय कर लीजिए कि अल्लाह ने जो आसानियां आपको दी हैं वो आसानियों में दूसरों को शामिल करना शुरू कर दें। मेरा ईमान है इस बात पर कि ज़कात सिर्फ आपके माल की नहीं होती, ज़कात आपके इल्म की भी होती है, ज़कात आपकी ताकत की भी होती है, ज़कात आपके ओहदे की भी होती है, ज़कात आपके फहम की भी होती है। तो अगर आप अपनी ताकत, फहम, इज्जत, दौलत में दूसरों को शरीक करना शुरू कर देंगे, आपकी खुशी जो उनसे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सर देखा गया है कि खुशी का बहुत बड़ा सबब, रिश्तों का एक सब सेक्शन है, वो है वाइफ। अब इस पे जो उनसे ना वो सारे हैरान होंगे कैसे, इन्होंने बकायदा रिसर्च की कि दुनिया के चैंपियंस जो उनसे हैं उनसे पूछा कि अगर आपको नोबल प्राइज मिले और उसके मुआवजे में अगर आपकी वाइफ आपको कहे कि यार तुम कमाल इंसान हो तो ज्यादा खुशी कब होगी? उन्होंने कहा जी अगर वाइफ कहे, यानी नोबल प्राइज की इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन आज हमारे घरों में हमें ये कहने वाले कोई नहीं है। सर जिंदगी में खुश रहने के लिए अच्छा अज़दवाजी रिश्ता बड़ा जरूरी है, बल्कि ये बकायदा फिर अगेन रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है कि अज़दवाजी जिंदगी का बड़ा गहरा ताल्लुक आपकी एज के साथ होता है। वैसे तो बीइंग अ मोमिन हमारा ईमान है कि अल्लाह को पता कितनी उम्र है, लेकिन आपकी हेल्थ का बड़ा गहरा ताल्लुक जोन सा अज़दवाजी रिश्ते के साथ होता है। मैं अक्सर इस बात को कोट करता हूं कि हमारे अज़दवाजी रिश्तों में एक्सप्रेशन भी नहीं रहा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ہم محسوس ہی نہیں کراتے, ہم کہتے ہی نہیں ہیں کہ یار ہمیں محبت ہے یا تم کتنے قابل قدر ہو. میں اکثر یہ کوٹ کرتا ہوں, یا کسی ڈپارٹمنٹ میں میں نے آفیسرز کو کچھ کو کہا کہ یار آپ گھر جائیں تو کبھی فیل کروایا کریں کہ جی میں بڑی محبت کرتا ہوں. ایک آفیسر نے ہاتھ کھڑا کر کے مذاق سے مجھے کہہ دیا کہ شاہ صاحب کیسے محسوس کریں, تو میں نے کہا جی آپ بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ جانو آئی لو یو, کتنے پیسے لگتے ہیں اس. اگلے دن وہی آفیسر آیا, آپ کہنے لگا جی میرے نا بڑی پیڑی ہوئی. میں کہا جی واٹ ہیپنڈ, وہ کہتے جی میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ساتھ ہی میری بیوی کہتی ابا جی نے کچھ ہو گیا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ جو آئی لو یو ہے یا محبت کا اظہار ہے یہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں رہا. یہ واٹس ایپ کے دل نے بھی بڑا کام خراب کیا, کیونکہ ہم نے بڑوں کو بھیجے ہوتے, جب بیگم کو بھیجتے تو اثر نہیں ہوتا. حضور والا ازدواجی رشتہ جو ہے وہ خوشی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ خوشی کا ایک اور بہت بڑا سبب لرننگ ہے, سیکھنا ہے. اگر آپ لرن کرتے رہتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, انفارمیشن کٹھی کرتے ہیں, نئی چیزوں پہ تحقیق کرتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, آپ میں جستجو پائی جاتی ہے سیکھنے کی, آپ زیادہ خوش رہتے ہیں. ریسرچ کرنے والے نے بتایا کہ خوش رہنے کے لیے معاف کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ معاف کرتے ہیں آپ زیادہ خوش رہتے ہیں. اگر آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے جن کے مقدمے نسل در نسل چل رہے ہیں, ان میں خوش رہنے کا مزاج عادت ہی نہیں رہتی. کئی لوگوں کو دیکھیں گے ان کے اسٹیٹک ایکسپریشن ہو چکے ہیں, ان کے شکل سے لگتا ہے کہ وہ جلاد بن چکے ہیں, معاف نہیں کر سکتے کسی کو. معاف کرنے والا جو چہرہ ہے یا انسان ہے, اللہ اس پہ رحم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ تم معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے. بندہ بندے کو معاف کرتا ہے اور وہ معافی اس کی اپنی معافی بن جاتی ہے. ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ وہ زیادہ لوگ خوش رہتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں, جو دنیا دیکھتے ہیں. بقول واصف علی واصف کے جیسے پیٹ کا رزق ہے روٹی, آنکھ کا رزق یہ کائنات ہے. کائنات کو دیکھنے والا زیادہ فریش رہتا ہے, دنیا کو دیکھنے والا زیادہ فریش رہتا ہے. تو اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو ٹریولنگ آپ کو زیادہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے اور زیادہ ہیپی بھی رکھتی ہے. سب سے اہم چیز جو رابن شرما نے اپنی کتاب مونک ہو سولڈ از فراری میں بھی کوٹ کی, اس نے کہا خوش رہنے کے لیے ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اصل والی وارث, آپ کا اصل محافظ, آپ سے پہلے آپ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات. جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے تو آپ کو یہ یقین ہوتا ہے میرے کوئی نمبر نہیں کاٹ سکتا, میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا, میرا کوئی کچھ چھین نہیں سکتا. آج اسی معاشرے میں دیکھیے سر, ہم 5 بار اظہار کرتے ہیں اللہ کی بندگی کا, لیکن پریکٹیکلی لوگوں کا ایمان دیکھیے کس قدر کمزور ہے. وہ چند پیسوں پہ دوسرے کا نقصان کر دیتے ہیں, ذاتی مفاد پہ قومی مفاد کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. سو ایمان ایک ایسی دولت ہے, وہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ زیادہ خوش رہتا ہے. ایمان کے بارے میں مجھے ایک صبح ایک واقعہ میں نے بچوں کے ساتھ بھی کوٹ کیا, اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں میرے لیے بڑی لرننگ ہے, آپ اسے لرن کریں گے. ہمارے زمانے طالب علمی میں ہماری ایک فیلو تھی جس نے اپنی چوائس پہ الیکٹریکل انجینئرنگ کی بجائے آرکیٹیکچر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد وہ پہلے سال اس نے ٹاپ کیا, سیکنڈ ایئر میں پھر ٹاپ کیا, تھرڈ ایئر میں ہمیں پتا لگا, کیونکہ چھوٹی سی یونیورسٹی تھی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی, پتا لگا کہ وہ محترمہ جونسی ہے وہ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی. اور یونیورسٹی چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک پروفیسر نے زیادتی کر کے اس کے نمبر کاٹ لیے, وائوا میں انٹرنل وائوا میں نمبر کاٹ لیے. ہم سب کے سب اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے. گھر گئے تو پتہ لگا شی از آن ڈیتھ بیڈ, وہ مرنے کے قریب ہے اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. ڈپریشن سے وہ مرنے والی تھی. تو ہم سب کے سب اس محترمہ کو, بی بی کو, اشفاق صاحب کے پاس لے گئے. اشفاق صاحب نے اسے بٹھا کے بات کی, چند منٹوں کی بات سے اشفاق صاحب نے اسے ٹھیک کر دیا. ہم اسے چھیڑنے لگے کہ بی بی یہ بتاؤ یہ کیسے ہوا, کیا بات کی کہ تم ٹھیک ہو گئی. تو کہتے اشفاق صاحب نے میرے سے پوچھا بیٹا نمبر کتنے آئے تھے. میں نے کہا جی 2 نمبر آئے تھے. کتنے نہیں آئے تھے؟ 8 نہیں آئے تھے. ٹوٹل کتنے تھے؟ 10 تھے. یعنی 10 میں سے 2 نمبر آئے تھے, 8 نہیں آئے تھے. اشفاق صاحب نے کہا بیٹا وہ جو 8 نمبر نہیں آئے نا, وہ اللہ نے کسی اور جگہ لگا دی. اب یہ ایمان کی وہ 8 نمبر کہیں اور لگ گیا, وہ محترمہ ٹھیک ہوگی, کہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے کو یقین ہے میرا نقصان کوئی نہیں کر سکتا, میرا کوئی گوایا نہیں سکتا, میرا کوئی لاس نہیں ہو سکتا, میرا کوئی چیز چھینی نہیں جا سکتی. کمنگ ڈیز میں میں حیران کہ محترمہ سے میری ملاقات کو 1.5 سال پہلے ہوئی, تو وہ کوئی کمپنی چلا رہی تھی دبئی میں اور اس نے مجھے یہ بات اعلانیہ کہی. اس نے کہا قاسم صاحب اللہ نے وہ 8 نمبر ایک بار نہیں لٹائے, 100 بار لٹائے ہیں صرف اس صبر کی وجہ سے. سو آپ کا جو ایمان ہوتا ہے, جو اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے, وہ ایمان اور یقین جو انسا ہے وہ آپ کو زیادہ سکسیسفل اور زیادہ ہیپی بناتا ہے. ایک چیز جو لیٹسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں, ایک ریسرچ ہے ڈونلڈ کلپٹن کی ये रिसर्च में उसने 1.5 मिलियन लोगों पे रिसर्च की, ये 15 लाख लोग थे, 40 साल लग गए। इसने ढूंढा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। उसने पहली टाइप को कहा दे आर डायपर, और दूसरी टाइप को कहा दे आर लाइक अ बास्केट। उसने कहा दुनिया में कुछ लोग हैं उनके पास बैठ के ना आपकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। दुनिया में दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके पास बैठ के आपके अंदर की बाल्टी जो उनसी है वो भरना शुरू हो जाती है। उसने कहा खुश रहने के लिए जरूरी है कि अपने वो दोस्त अहबाब और वो लोग ढूंढे जिनके साथ बैठ के आपकी खुशी बढ़ती है बास्केट की तरह। डायपर से बचे। तो वो इतनी बड़ी रिसर्च के बाद उसने बताया कि खुश रहने के लिए हम मिजाज लोग ढूंढना बड़े जरूरी है, जिनके साथ नजरिया मिलता हो, जिनके साथ सोच मिलती हो, जिनके साथ शेयरिंग मिलती हो, जिनके साथ आपकी वैल्यूज मिलती हो। मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जिंदगी में जो स्ट्रगलर रहे, स्ट्रगलर स्ट्रगलर का दोस्त हो जाता है। वो कहता है मैं भी टाट के स्कूल पढ़ा, तू भी टाट के स्कूल, मैं भी ऐसे मुश्किल से जाया करता था, तू भी जाया करता था। वो दोनों का जो उनसे जुड़ना है मिलना है वो वैल्यूज और कल्चर की सिमिलैरिटी की बेस पे हुआ, और उनकी खुशी और उनके पास जो राहत है वो ज्यादा होने लग पड़ी। आप अपनी जिंदगी में खुशी बढ़ाना चाहते हैं तो गुफार कैसरानी साहब वाली ये बात कि दूसरों को खुश रखना शुरू कर दें, कोशिश करें कि आपसे को हर्ट ना हो, आपसे को बददुआ ना ले। आप इंसानों से मोहब्बत करनी शुरू कर दें, और वो मोहब्बत बेलोस होनी चाहिए, बेलोस मोहब्बत शुरू कर दें। बेलोस मोहब्बत आप हैरान होंगे कि वो बेलोस मोहब्बत जो आपने दी हुई है कुदरत सुकून और अमन की शक्ल में आपके दिल पे नाजिल करना शुरू कर देगी। क्योंकि हमारी मोहब्बतें मशरूत होती हैं, कंडीशनल होती हैं, काम पड़ता तो होती हैं। अगर बेलोस मोहब्बतें करने के हम आदी हो जाएं कि कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह की मखलूक ये भी है मैं भी हूं, ये भी अपना दाना पानी पूरा कर रहा है मैं भी कर रहा हूं, ये भी अपना नसीब लेकर आया मैं भी नसीब लेकर आया हूं, तो क्यों ना इसका एहतराम किया जाए। आप ये मोहब्बत अल्लाह के लिए करनी शुरू कर दें, आप अंदाजा लगाइए आपकी जिंदगी में खुशी बढ़ जाएगी। एक छोटे से मैसेज के साथ मैं इख्तिताम चाहूंगा। हम लायंस क्लब में हो, हम कासिम अली शाह फाउंडेशन में हो, हम किसी इदारे में हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब से। हम सर एक ऐसे मुल्क में है जहां पर हमारी एक बड़ी आबादी मुसलमान है, हम सब का ईमान है अल्लाह की जात पे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी पे। हमें एक स्लोगन में तब्दीली करनी चाहिए। ये जो हम लाखों ऑपरेशन करवाते हैं, लाखों आसानियां पैदा करते हैं, ये किसी क्लब के लिए नहीं होती, अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर हम ये नियत कर लें कि ये हमारे अल्लाह की रजा के लिए है तो खुदा की कसम वो सवाब भी बनेगा और आपके लिए अजर भी बन जाएगा दुनिया में कई शक्लों में। हमारा प्रॉब्लम ये होता है हम क्रेडिट इदारों को चीजों को दे देते हैं। खुदा की कसम अल्लाह तौफीक ना दे तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े काबिल तरीन लोग जो उनसे ना वो डिलीवर नहीं कर पाते। बड़े बड़े PhD मैंने स्कॉलर देखे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। बड़े बड़े किताबें लिखने वालों के मैंने जनाजे वीरान देखे हैं। वजह क्या है? अल्लाह अगर अपना कर्म ना करे तो बंदे की मजाल नहीं है कि बंदा कुछ कर सके। सो क्यों ना आज से हम एक कंसेप्ट बदलें, अपनी मजलिसों में, महफिलों में, कि यार जो नेकी हमने की है ठीक है, प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं, उसकी असल वजह मेरे अल्लाह की रजा है। ये क्लब माशाल्लाह 150-200 साल पहले बना हुआ, मैं इसका दिली तौर पर मानी हूं, लेकिन मेरा ईमान है कि ये तमाम का तमाम खैर का मैसेज 1400 साल पहले मेरे रसूल ने दे दिया था। उससे बड़ा कोई मैसेज नहीं हो सकता। ये खैर का मैसेज जब रसूल ने दे दिया तो साथ ये भी सिखा दिया कि अगर रोशनदान भी लगाना है तो हवा की नीयत से ना लगा लेना, हवा ने आ जाना है। अगर अजान आ जाएगी तो रोशनदान भी लगा रहेगा और सवाब भी होता रहेगा। सो हमें अपनी नेकियों में अल्लाह की रजा को सबसे पहले रखना चाहिए कि सारी दुनिया के बंदे राजी हो जाएं। अगर मेरा रब राजी ना हो तो किसी का विलाप नहीं है। हातम ताई बड़ा इंसान था और उसके बारे में राय यह पाई जाती है कि उस जैसा शायद कोई सखी कोई नहीं होगा, लेकिन उसकी सखावत अगर आप तहकीक करके देखें अल्लाह के लिए नहीं थी, वो सखावत मिजाजन सखावत थी, रिकॉग्निशन के लिए थी। और उसके बारे में कहा जाता है कि अजर उसने दुनिया में पा लिया, अजर अल्लाह का उसके पास है जो कर रहा है इसलिए कर रहा है कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए। सो हमें अपनी इस नीयत और कंसेप्ट को जरूर वाजिया करना चाहिए कि हमारा कोई काम अगर अल्लाह की रजा के लिए है तो हमने सिला भी किससे लेना है? अल्लाह से लेना है। बल्कि ये जुमला अगर कह दूं तो गलत नहीं होगा कि नेकी भी अल्लाह के लिए और अजर भी अल्लाह से, बंदे से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये वतन अजीज जो उनसा ना, इसको थोड़ी थोड़ी कोशिशों की बड़ी जरूरत है। कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा साहिल है सर, उस साहिल पे जब पानी आ जाता है ना तो पानी आते ही स्टार फिश जो उनसी है वो रेत पे आ जाती है, पानी उतर जाता है स्टार फिश रह जाती है। किसी रिटायर अफसर ने देखा एक दिन वहां पर एक 9 साल का बच्चा एक एक मछली को उठा के वापस फेंक रहा, मछली को जा नहीं सकती, कितनी मछलियां उसने फेंक दी लेकिन सामने लाखों थी। ये रिटायर अफसर सिगार लगा के उसके पास आया, कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा यार ये तुम छोटे से 9-10 साल के हो, पूरा दिन भी लगाओगे कितनी फेंक लोगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उस बच्चे ने एक मछली उठाई और बड़े जज्बाती अंदाज में एक जुमला बोला, उसने कहा ये जिसको मैंने उठाया इसको तो फर्क पड़ेगा। वो एक को जो फर्क पड़ता है आपको अंदाजा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा जज्बा बन जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।